पाठ 34 अध्याय 23 जारी। जैसा कि हम लैव या व्यवस्था अध्याय 23 की अपनी जांच जारी रखते हैं, यह बाइबल के परवाएं के बारे में है जिन्हें नियुक्त या निर्दिष्ट समय के रूप में भी जाना जाता है। हमने अब तक फसह और मज्जा के पर्व को देखा है और हम पर्वों के क्रम को जारी रखेंगे क्योंकि वे इब्रानी धार्मिक घटना कैलेंडर पर है। आइए लैव्य व्यवस्था 23 का कुछ अंश पुनः पढ़ें। लैव्य व्यवस्था 23 का 1 से 22 को दोबारा पढ़ें। ठीक है, पद 9, पेसाच और मात्जा के संयुक्त पर्वों के लिए निर्देशों और उनके बाद आने वाली चीजों के बीच एक विराम के रूप में कार्य करता है, और जो आने वाला है वह प्रथम फलों के पर्व और सप्ताहों के पर्व के लिए निर्देश है। प्रथम फलों का पर्व इब्रानी में बिक्कुरिम है और सप्ताहों का पर्व इब्रानी में शावोत कहलाता है। पद 9 और 10 के बारे में मुख्य बात यह है कि यह कहता है कि इसराइल प्रथम फलों का पर्व तब तक नहीं मनाएगा जब तक वे वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर लेते। इसका कारण तार्किक है। जब तक इसराइल ने कनान पर विजय प्राप्त नहीं की, तब तक उनके पास फसल का कोई प्रथम फल चढ़ाने के लिए नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी जंगल यात्रा के दौरान भूमि की जुताई और फसलें नहीं उगाई। बिक्कुरिम और शावोत, जिनकी चर्चा इन आयतों में की जा रही है, कृषि आधारित पर्व हैं। एक वसंत और फिर एक ग्रीष्मकालीन पर्व, इसलिए मिस्र छोड़ने के 40 साल से ज्यादा समय बाद और माउंट सिनाई पर इस कानून को प्राप्त होने के 40 साल से ज्यादा समय बाद ही इन्हें पहली बार मनाया जाने वाला था। आखिरकार ये इजरायली ज्यादातर रेगिस्तानी जंगल में भटक रहे थे। वे व्यापारियों से अनाज और सूखे मेवे खरीदते थे जो उनके पास बड़ी संख्या में आते होंगे। मैं यहां विषय से भटकना नहीं चाहता, लेकिन अगर हमें यह समझाना है कि 3 मिलियन लोगों की इस भटकती हुई भीड़ के दैनिक जीवन में क्या चल रहा था, तो हमें व्यावहारिक होना चाहिए। उन्हें अपना भोजन कहां से मिलता था? जंगल में रहते हुए वे केवल अपने झुंड और पशुओं का मांस खाते थे। जब वह जानवर जंगल के तंबू में बलि की भेंट का हिस्सा होता था, अभी के लिए मन्ना उनका मुख्य भोजन था। लेकिन हम यह भी देखेंगे कि वे जंगल में रोटी खाते थे। चूंकि वे अनाज उगा नहीं सकते थे, तो वे इसे कहां से लाते थे? व्यापारियों से। सुनो, आप 30 लाख लोगों को बिना हर किसी और उनके भाई को जाने इधर उधर नहीं ले जा सकते। इसराइल की गतिविधियां गुप्त रूप से नहीं की जाती थीं और उन्हें छिपाया नहीं जा सकता था। 30 लाख लोगों, भरी हुई गाड़ियों और उन रास्तों पर चलने वाले अनगिनत जानवरों से हवा में उठने वाली धूल का गुब्बार छिपाया नहीं जा सकता था। और जब उन्होंने डेरा डाला तो संभवतः वहां एक साथ हजारों कैंप फायर जल रहे थे और उनका धुआं ज्वालामुखी की तरह आसमान की ओर उठ रहा था। यह हर दिशा में कई मील दूर तक दिखाई देता होगा। व्यापारी और सौदागर ऊंट पर सवार पिस्सू की तरह उन पर टूट पड़ते और अपना माल बेचने के लिए अपनी पूरी 40 साल की यात्रा के दौरान शिविर की सीमाओं के बाहर ही रहते। विनिमय का माध्यम क्या था? इसराइलियों को अनाज, सूखे फल, कपड़े इत्यादि किस चीज से खरीदने पड़ते हैं? निर्गमन 12:35, अब इसराइलियों ने मूसा के वचन के अनुसार मिस्रियों से चांदी, सोने के गहने और कपड़े मांगे थे। 36, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर ऐसा अनुग्रह दिया कि उन्होंने उनकी मोहमांगी वस्तुएं दे दी। इस प्रकार उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया।
बहुत से इसराइली धनी थे। उनके पास विदेशी व्यापारियों से अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ढेर सारा चांदी, सोना और कीमती रत्न थे। उन्हें अपनी दौलत मिस्रियों से मिली थी। फिर भी यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि यह एक असमान दौलत थी। कुछ के पास बहुत ज्यादा था और कुछ के पास बहुत कम। कुछ ने इसका अच्छा इस्तेमाल किया और कुछ ने इसे बर्बाद कर दिया, जैसे सोने के बछड़े को बनाने के लिए इकट्ठा की गई राशि पर। इसलिए हर कोई अपने रोजाना के आहार में मन्ना के साथ अनाज और फल का पूरक नहीं ले पाता था। और हम निर्गमन और गिनती के अंशों में उन लोगों की शिकायत सुनते हैं जिन्हें संतुष्ट करने के लिए ये पूरक खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते थे। बिक्कुरिम और शावोत के पर्व आपस में मिल सकते हैं, खासकर अंग्रेजी बोलने वालों के बीच, क्योंकि ये दोनों ही प्रथम फलों के पर्व हैं। और कभी कभी हम पाते हैं कि दोनों को प्रथम फलों का पर्व कहा जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि बिक्कुरिम का मतलब इब्रानी में प्रथम फल होता है, इसलिए वसंत और ग्रीष्म दोनों ही प्रथम फलों के बाइबल पर्व तकनीकी रूप से बिक्कुरिम है। हालांकि आम तौर पर बिक्कुरिम प्रथम फलों के वसंत पर्व और शावोत को ग्रीष्मकालीन प्रथम फलों के त्योहार के नाम से जाना जाता है, जिसे आम तौर पर सप्ताहों के पर्व के रूप में जाना जाता है। अब प्रथम फलों का वसंत पर्व बिक्कुरिम एक दिन का आयोजन था, ठीक वैसे ही जैसे फसह एक दिन का पर्व था। और पद 11 कहता है कि जिस दिन यह पर्व मनाया जाना है वह सप्त के बाद का दिन है। दूसरे शब्दों में पवित्र शास्त्र फसह निसान 14 की तरह इसे कोई निश्चित तिथि नहीं देता है, बल्कि प्रथम फलों के पर्व के समय का निर्धारण इस बात पर आधारित है कि फसह और अखमीरी रोटी सप्ताह के किस दिन पड़ती है। इस वास्तविकता ने बिक्कुरिम को कब मनाया जाए इस पर प्रतिस्पर्धात्मक परंपराओं को जन्म दिया है, और यह कम से कम आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि लैव या व्यवस्था शास्त्र का यह अंश स्पष्ट नहीं है कि यहां किस तरह के सप्त की बात की जा रही है, अर्थात बिक्कुरिम किस सप्त के बाद उस दिन होगा। क्या मानक सातवें दिन साप्ताहिक शनिवार है या यह अन्य प्रकारों में से एक है जो अक्सर पर्वों से जुड़े होते हैं? इस बात को लेकर आर्षियों और शास्त्रियों के बीच बहुत बहस हुई कि उन्हें इस निर्धारण के बारे में कैसे जाना चाहिए। अंत में निर्णय के पीछे के सभी तर्कों में जाने के बिना यह सबसे स्वीकार्य परंपरा बन गई है कि प्रथम फल हर साल निसान 16 के निश्चित दिन पर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्णय लिया गया था कि पद 11 का सप्त सातवां दिन सप्त नहीं है, बल्कि यह सप्त को संदर्भित करता है जो अखमीरी रोटी का पहला दिन है। पहले के पदों को याद करें जिन्होंने मज्जा सप्त के पर्व के पहले और आखिरी दिन को सप्त बनाया था। तो फसह निसान 14 को है, अखमीरी रोटी का पहला दिन निसान 15 को है, और यह तैयारी के लिए अलग रखा गया सप्त का दिन भी है। चूंकि प्रथम फल का पर्व सप्त के बाद वाले दिन पड़ता है, इसीलिए प्रथम फल को निसान 16 माना जाता है। तो यहां हमारे पास फसह, मज्जा और प्रथम फल के क्रमिक बाइबल पर्व हैं, जो सभी जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और लगभग एक साथ मनाए जा रहे हैं। मैं इसे दूसरे तरीके से कहता हूं, हमारे यहां तीन बाइबल पर्वों की शुरुआत लगातार तीन दिनों में होती है, निसान 14 फसह, निसान 15 अखमीरी रोटी, निसान 16 प्रथम फल बिक्कुरिम। प्रथम फल पर वसंतकालीन जौ की फसल से पहला ओमेर पुजारी के पास यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने के लिए लाया जाना चाहिए।
प्रथम फल के संदर्भ में ओमर नए जौ का एक पूला है। पहला ओमर लाने का यह दिन धार्मिक यहूदी धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इसका बहुत इंतजार किया जाता है। हम अक्सर धार्मिक यहूदी समुदाय को पहले ओमर की गिनती के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। बिक्कुरिम प्रथम फल का यह दिन उस पहले ओमर का दिन है। लैव्य व्यवस्था नियमों के कारण वसंत की फसलों से उपज तब तक नहीं खाई जा सकती थी जब तक कि इसे पहले यहोवा को समर्पित न कर दिया जाए, क्योंकि मूल रूप से प्रथम फल का यही अर्थ था। एक बार जब प्रत्येक इसराइली अपनी फसल का पहला भाग, जो कि प्रथम फल का अर्थ है, चढ़ा देता था, तब वह अपने खेतों की ताजा उपज खाना शुरू कर सकता था। इस पर्व की प्रत्याशित प्रकृति को समझें। पतझर की फसल के अंत से कुछ महीनों तक इसराइली संरक्षित किए गए सूखे और भुने हुए अनाज खाते रहे थे। स्वीकार्य और पौष्टिक होते हुए भी यह ताजे के समान नहीं था। इसलिए जब प्रथम फल आए तो इसराइली रोमांचित हो गए और फिर वे अपने श्रम के नए फलों का आनंद लेना शुरू कर सकते थे। प्रथम फल का यह दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह शवोत सप्ताहों के पर्व, जिसे बाद में ग्रीक में पेंटेकोस्ट कहा गया, कि उल्टी गिनती की घड़ी की शुरुआत थी। फसह के दो दिन बाद निसान 16 से शुरू होकर 50वां दिन गिने जाने थे और उस 50वें दिन शवोत पेंटेकोस्ट था। उन 50 दिनों में से प्रत्येक दिन जौ का एक ओमर मंदिर में लाया जाता था। इस प्रकार कुल 50 ओमर पेश किए जाते थे, जिसमें से 50वां दिन शवोत सप्ताहों के पर्व पर होता था। प्रथम फल का अनाज पुजारी को पेश किया जाता था, जो फिर इसे तेनुफा के माध्यम से प्रभु को पेश करता था।
तेनुफा को हम लहराते हुए भेंट कहते हैं। पुजारी अनाज के पूले को कंधे पर उठाकर उसे एक तरफ से दूसरी तरफ और फिर ऊपर नीचे हिलाता था। विचार यह था कि वह इसे यहोवा को पेश कर रहा था और उसकी स्वीकृति मांग रहा था। जिस दिन पूले को एक लहराते हुए भेंट के रूप में पेश किया जाता था, उसी दिन एक औलाह, एक होम बलि चढ़ाया जाना था और चुना गया जानवर 1 साल का नर मेमना होना था, यानी एक छोटा मेरहा। और जैसा कि हमने कई महीने पहले लैव्य व्यवस्था के शुरुआती हिस्सों में सीखा था, जब भी औलाह चढ़ाया जाता था तो उसके साथ एक मिनचाह भी चढ़ाया जाता था। मिनचाह एक अनाज की भेंट थी जिसमें या तो नम कच्चा आटा, पका हुआ केक जैसा आटा या एक ग्रिल्ड फ्लैट ब्रेड होता था। इसके अलावा प्रथम फल में एक अर्घ्य अर्पण शामिल होना था। अर्घ्य का अर्थ है एक तरल और इसलिए इसे कभी कभी पेय अर्पण कहा जाता है। अवसर के आधार पर मदिरा जल भी हो सकती है, लेकिन यहां मदिरा का प्रयोग किया जाता है। एक बात है, जब बाइबल शराब कहती है तो इसका मतलब शराब होता है, किण्वित अंगूर। ये अंगूर का रस नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। उन दिनों इस्तेमाल होने वाले एकमात्र अंगूर के रस को अंगूर को निचोड़ने के तुरंत बाद पीना पड़ता था या यह खराब हो जाता था। अंगूर से शराब बनाने की किण्वन प्रक्रिया ने 2 गुना उद्देश्य पूरा किया। एक, इसने एक स्वास्थ्यवर्धक पेय बनाया जिसे लंबे समय तक संग्रहित किया जा सकता था, और 2, यह एक मादक पेय प्रदान करता था जो खुशी के मौकों पर आराम करने के लिए बनाया जाता था। अब पुराना नियम में शराब के लिए सामान्य शब्द याइन है, और इसका मतलब है कि शराब जो थोड़े समय के लिए किण्वित की गई है। इसकी अल्कोहल सामग्री हल्की थी, जैसा कि एक सामान्य आधुनिक टेबल वाइन में होता है। कुछ वाइन को लंबे समय तक किण्वित होने दिया जाता था और निश्चित रूप से इसका परिणाम हार्ड लिकर जैसा कुछ होता था। इस लंबी किण्वन अवधि का लक्ष्य एक मादक पेय बनाना था जो शक्तिशाली था। इब्रानी में इस पेय को शेखर कहा जाता था। याइन, नियमित शराब, को लगभग हमेशा बाइबल में एक अच्छी चीज के रूप में बताया जाता है। ये शेखर मजबूत पेय है जिसके खिलाफ बात की जाती है, और यह इतना नहीं है कि शेखर अत्यधिक मादक है जो समस्या है। यह है कि शेखर का उद्देश्य पवित्र अभिषेक या स्वास्थ्य के लिए नहीं था, यह बस सबसे तेज संभव तरीके से नशे में धुत होने के लिए था।
अब जब हम पद 15 पर पहुंचते हैं तो विषय प्रथम फलों के वसंत पर्व बिक्कुरिम से बदलकर शावोत, पिंतेकुस्त के ग्रीष्मकालीन उत्सव पर आ जाता है। 2 रोटियां लाकर पुजारी को दी जानी चाहिए जो उन्हें तेनुफा, एक लहरदार भेंट के रूप में भी चढ़ाएगा। एक साइड नोट के रूप में यहां इस्तेमाल की गई 2 रोटियों को चैमेट्स कहा जाता था, जिसका अर्थ है कि इसमें खमीर था। चूंकि यह नियम था कि खमीर वाली कोई भी चीज होम बलि की वेदी पर नहीं चढ़ सकती थी और न ही उसके पास आ सकती थी, इसका मतलब है कि इस रोटी चैमेट्स को वेदी तक जाने वाली सीढ़ी के नीचे पेश किया जाना था। वेदी पर चढ़ना तब हुआ जब पुजारी पहले कदम पर खड़ा था, इसलिए वह सीढ़ी से कुछ पीछे खड़ा होगा, ऊंची वेदी को देखेगा और उस दिशा में 2 रोटियों को हिलाएगा। उन 2 खमीरी रोटियों को वेदी तक ले जाना एक भयानक अपवित्रता होती। 2 रोटियों के साथ 7 युवा नर मेरहे, 1 युवा बैल और 2 परिपक्व मेरहे चढ़ाए जाने चाहिए। जबकि हमारी बाइबलें युवा और परिपक्व शब्दों को छोड़ देती हैं, मूल इब्रानी शब्द हमें बताते हैं कि यह मामला है। 7 मेमने इब्रानी केबेस में है, जिसका अर्थ है युवा नर मेरहे। बैल की उम्र को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द पार है, और इसका अर्थ एक परिपक्व बैल के विपरीत 1 साल का बैल है। जहां 2 मेरहे कहते हैं वहां शब्द आइल है, और इसका अर्थ है एक पूरी तरह से परिपक्व मेरहा। ये सभी प्रसाद औलाह श्रेणी के हैं, और इसलिए हम अन्न प्रसाद, मिनचाह प्रसाद का प्रयोग देखते हैं जो परंपरागत रूप से औलाह के साथ दिया जाता है। लेकिन आयत 19 में एक और तरह की भेंट की बात कही गई है, हत्तात में नर बकरे का इस्तेमाल किया जाता है। फिर 2 और केबेस नर मेमने का इस्तेमाल करके शेलामीम भेंट चढ़ाने का विधान है, और शेलामीम के 2 मेमने तेनुफा यानी लहर चढ़ाने वाली भेंट होनी चाहिए।
मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी बात पर ध्यान दें जो संयोगवश नहीं है अब तक की हर बलिनर है, और बाइबल के चार पर्व जो एक साथ आते हैं और यहां एक साथ चलते हैं, फसह, मादजा, प्रथम फल और शवोत, यीशु की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के आगमन के बारे में कुछ बहुत ही गहरा अर्थ रखते हैं। इन पर्वों में से प्रत्येक के लिए आवश्यक बलिदानों में से प्रत्येक के दौरान प्रभु को पेश किए जाने वाले पशु बलि नर होने चाहिए थे। यीशु हमारे उद्धार के राम निश्चित रूप से एक नर थे। यह भी ध्यान दें कि 50वें दिन पिंतेकुस्त शवोत को भी सप्त के दिन के रूप में नामित किया गया था। पुनः यह 7वां दिन सप्त नहीं था बल्कि यह अन्य पर्वों का दिन था जिसके दौरान सामान्य श्रम बंद कर दिया जाता था ताकि उत्सव मनाया जा सके और एक साथ एकत्र हुआ जा सके। आइए हम फिर से वसंत ऋतु के पर्वों पर वापस लौटें। बिक्कुरिम प्रथम फल के समय पर विश्वासियों के लिए प्रथम फल के पर्व का क्या महत्व है? पौलुस यह कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:20, परंतु अब मसीह मरे हुओं में से जी उठा है और सोए हुओं में से पहला फल है। यीशु अपने स्वयं के पूर्ण किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप शारीरिक रूप से पुनर्जीवित होने वाले पहले व्यक्ति हैं, और जैसा कि हम बिक्कुरिम के पालन से देखते हैं, फसल के पहले फलों को मंदिर में प्रस्तुत किए जाने के बाद लोग अपनी फसल का हिस्सा ले सकते हैं। यीशु सबसे पहले उठे और उनके दूसरे आगमन के साथ हम अपनी कब्रों से उठेंगे जैसे उन्होंने किया था। प्रथम फल पुनरुत्थान का संकेत है। इसमें एक भौतिक सांसारिक घटक और एक आध्यात्मिक घटक है, जैसा कि सभी बाइबल परवाएं में होता है। लैव्य व्यवस्था 23 के प्रथम फलों को इब्रानियों द्वारा कई शताब्दियों तक मनाया जाता था जब तक मंदिर अस्तित्व में था। आज भी इसे मनाया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से अलग तरीके से, क्योंकि अब कोई मंदिर नहीं है जहां अनाज और जानवरों और छमिट्स की रोटी आदि को लाया जा सके। यीशु ने प्रथम फल के अर्थ को आध्यात्मिक स्तर पर लाया, जिसे हमेशा सही समय पर लाने का इरादा था। हमारे समय में प्रथम फल उस समय की याद के रूप में देखा जाता है जब मसीह अपनी चट्टानी कब्र से उठे थे। यह अब उनके अनुयायियों के लिए स्मरणोत्सव का उत्सव है। यह एक पूर्ण कार्य है।
मुझे यह छोटा सा रहस्य झोरने दीजिए जिसे मैं आपके लिए उजागर करना चाहता हूं। जैसे कि पहले ओमेर के बाद जौ के पहले फल परमेश्वर को पेश किए गए थे, तब लोग अनाज का हिस्सा बनने में सक्षम थे। अब जब पुनरुत्थान के पहले फल यीशु को यहोवा को पेश किया गया है, तो हम उनके अनुयायी पुनरुत्थान का हिस्सा कब बन सकते हैं? क्या कोई ऐसा पर्व है जो उस दिन को दर्शाता है? हाँ, ऐसा है, और हम जल्द ही इस पर चर्चा करेंगे। वसंत और ग्रीष्म उत्सवों वाला भाग इस निर्देश के साथ समाप्त होता है, एक अनुस्मारक कि खेत मालिकों को अपने सारे खेत की कटाई नहीं करनी है। गरीबों के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल अछूती छोड़नी है ताकि वे आकर उसे बीन सकें।
लैव अव्यवस्था 23:23-32 को पुनः पढ़ें। अब हम वसंत और ग्रीष्म ऋतु के त्योहारों से पतझर की ओर बढ़ते हैं। वर्ष का 7वां महीना, जिसे बेबीलोन के बाद मिश्री कहा जाता था, वह समय है जब त्योहारों की पतझर श्रृंखला शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखें कि मिश्री इब्रानी लोगों के लिए धार्मिक घटना कैलेंडर का 7वां महीना है, लेकिन यह नागरिक कैलेंडर वर्ष का पहला महीना है। इस प्रकार मिश्री का पहला दिन यहूदी नव वर्ष है, जिसे रोश हशनाह कहा जाता है, जिसका अर्थ है वर्ष का मुखिया। यह पर्व अंततः पद 24 के मिठवा के कारण तुरही के पर्व के रूप में भी जाना जाने लगा, जिसमें कहा गया है कि 7वें महीने के पहले दिन उत्सव के साथ जोरदार धमाके होंगे, यानी तुरही की आवाजें।
यहोवा ने नए साल के पहले दिन को भी सप्त के रूप में नियुक्त किया है, जैसा कि हमने कई बार देखा है। यहां 7वें दिन के सप्त की चर्चा नहीं की जा रही है, बल्कि दूसरे प्रकार के सप्त की चर्चा की जा रही है। ध्यान रहे कि यह वास्तव में तीसरे प्रकार का सप्त है जिससे हम परिचित हैं। 7वें दिन का सप्त, जिसे सप्त कहा जाता है, हर सप्ताह 7वें दिन मनाया जाने वाला उत्सव है, जिस दिन परमेश्वर ने सृष्टि का अपना कार्य समाप्त किया था। सप्त के लिए किसी भी और सभी प्रकार के कार्यों को पूरी तरह से बंद करना आवश्यक है। अन्य प्रकार के छद्म सप्त जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं,
जो इनमें से कुछ बाइबल पर्वों से जुड़े हैं, सप्त से इस मायने में भिन्न हैं कि क वे सप्ताह के किसी विशेष दिन नहीं पड़ते हैं और ख उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी कार्य बंद कर दिए जाए, आमतौर पर केवल आपके नियमित दैनिक कार्य। ये छद्म सप्त आराम के दिन नहीं है, वे तैयारी के दिन हैं। हालांकि नए साल के दिन जिस तरह का सप्त मनाया जाता है वह सातवें दिन के सप्त सप्त की तरह ही है, जिसमें हर तरह का काम वर्जित है। ये पूर्ण विश्राम का दिन है, तैयारी का दिन नहीं। और हालांकि ये पूर्ण विश्राम का दिन है, फिर भी वेदी पर एक विशेष बलिदान भी लाया जाना चाहिए। ठीक 9 दिन बाद सातवें महीने का 10वां दिन शायद पूरे साल का सबसे पवित्र दिन होता है, योम किप्पुर, प्रायश्चित का दिन। यहूदी नव वर्ष को योम किप्पुर के साथ मिलाकर अक्सर यहूदियों के बीच उच्च पवित्र दिनों के रूप में संदर्भित किया जाता है। वास्तव में एक बिल्कुल उपयुक्त नाम,
रोश हशाना, यहूदी नव वर्ष जिसे तुरही का पर्व भी कहा जाता है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। बाइबल में तुरही बजाना आम तौर पर पूरी मंडली को एल एलियोन, सर्वोच्च ईश्वर के सामने इकट्ठा होने के लिए एक आह्वान था, या तो एक पवित्र सम्मेलन के कारण या युद्ध के आह्वान के रूप में।
आज जब हम इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं तो हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ शावोत पेंटेकोस्ट की आध्यात्मिक पूर्ति है और दूसरी तरफ तुरही के पर्व की आध्यात्मिक पूर्ति है। अगर हम अतीत को देखें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि सभी तीन वसंत पर्व और एकमात्र ग्रीष्मकालीन पर्व यीशु द्वारा पूरे किए गए हैं। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हम पतझर के पर्वों की आध्यात्मिक पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अगला पर्व तुरही का पर्व रोश हशनाह है, क्योंकि जब तुरही बजेगी तो यह वास्तव में परमेश्वर के पवित्र लोगों हमारे लिए इकट्ठा होने का आह्वान होगा। ये एक पवित्र सम्मेलन का आह्वान होगा क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु के सामने पेश होने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं जब वे बादलों में आएंगे, हमारे शक्तिशाली राजा। लेकिन यह युद्ध का आह्वान भी होगा। आखिरकार हजारों सालों की तैयारी के बाद सभी युद्धों को समाप्त करने के लिए युद्ध लड़ा जाएगा और यीशु मसीहा बेन डेविड हमारे शक्तिशाली योद्धा द्वारा तेजी से जीता जाएगा। और जिस प्रकार यीशु की सेवकाई की अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाएं उनके भविष्यवाणी वाले पर्व के दिनों में ही घटित हुईं, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं भी ठीक उसी प्रकार घटित होंगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हालांकि मैंने पहले भी यह बात कही है, यीशु को फसह के दिन मारा गया, अखमीरी रोटी के पहले दिन कब्र में रखा गया और प्रथम फल बिक्कुरिम के पर्व पर जी उठा, फिर 50 दिन बाद शवोत के दिन पवित्र आत्मा ने मनुष्यों में वास करना शुरू कर दिया।
ये मेरी अटकलें नहीं हैं, नया नियम स्पष्ट रूप से यह बताता है। इसलिए मैं स्वर्ग से उस शक्तिशाली तुरही की ध्वनि की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो हमारे राजा की वापसी का संकेत देती है, जो निकट भविष्य में रोश हशाना पर घटित होगी। अब मैं आसानी से स्वीकार करता हूं कि मैं 100% निश्चित नहीं हो सकता कि यीशु के सभी अंतिम कार्य पतझर के पर्व के दिनों में होंगे, लेकिन अगर यह कुछ अलग होता तो यह निश्चित रूप से पैटर्न में एक बड़ा बदलाव होता।
प्रायश्चित का दिन योम किप्पुर बाइबल के अनुसार अंतिम पर्व से अगला है। योम किप्पुर एक बहुत ही गमगीन दिन है वास्तव में, जबकि वसंत के पर्वों में एक महान और आनंदमय स्वर होता है, पतझर के पर्व बहुत अधिक शांत होते हैं। जब कोई व्यक्ति अंततः समझ सकता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये सभी पर्व क्या दर्शाते हैं, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि यहोवा ने इन 7 बाइबल पर्वों में से प्रत्येक को न केवल अपने उद्देश्य के साथ बल्कि अपने स्वयं के चरित्र के साथ क्यों बनाया। वसंत के पर्व अपने साथ व्यवस्था के श्रापों से मुक्ति लेकर आए, उन्होंने हमारे पाप पर पाप की निंदा को समाप्त कर दिया, उन्होंने हमारी स्वतंत्रता और अनंत आध्यात्मिक मृत्यु से मुक्ति खरीदी। मैं सभी को सुनाने के लिए कहना चाहता हूं, यह व्यवस्था के सिद्धांतों या आदेशों से मुक्ति नहीं थी, बल्कि व्यवस्था के विरुद्ध हमारे अपराधों के लिए हमें मिलने वाली सजा से मुक्ति थी। फसह, अखमीरी रोटी, प्रथम फल और शवोत के इन वसंत और ग्रीष्मकालीन त्योहारों से नया जीवन उत्पन्न होता है। लेकिन पतझर के त्योहारों में सही मायने में बहुत ज्यादा करवाहट होती है, क्योंकि यीशु का आना कई लोगों के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन यह अधिकांश मानव जाति के लिए अंतिम विनाश का संकेत भी होगा। इस ग्रह पर मृत्यु और दुख इतने बड़े पैमाने पर फैलाए जाएंगे जिसकी कल्पना हमारे मानवीय दिमाग में नहीं की जा सकती, और इसे यहोवा द्वारा जानबूझकर फैलाया जाएगा। हमें बताया गया है कि अगर वह इसे उस समय तक नहीं रोकता जब यह अपने आप रुक जाता तो कुछ भी नहीं बचता, कोई जीवन ही नहीं। हमारा ग्रह हमारे ब्रह्मांड को बनाने वाली अनगिनत खरों, अन्य बंजर चट्टानों के बीच एक और बंजर चट्टान बन जाएगा। मैं कहूंगा कि यहां विचार और स्वर की गंभीरता की आवश्यकता है, क्या आप नहीं सोचेंगे? ओह, मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ अपने बारे में, अपने छुड़ाए हुए स्व के बारे में सोचें और इस दुनिया पर प्रभु के आने वाले क्रोध के परिणाम स्वरूप हमें किस तरह की अनंत खुशी का इंतजार है, तो मैं कल्पना करता हूं कि हम इस समय का बहुत उत्साह और खुशी के साथ इंतजार कर सकते हैं। लेकिन हमारे अविश्वासी माता पिता के बारे में क्या, या हमारी उस विद्रोही किशोर बेटी के बारे में जो अपने पब्लिक स्कूल में सिखाई गई धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद की स्वतंत्रता को पसंद करती है? हमें अपने जीवन साथियों के भविष्य के बारे में क्या सोचना चाहिए जो हमारे विश्वास को अस्वीकार करते हैं, या हमारे जीवन में अच्छे लोग जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, और हमारे विशेष समारोहों में उन स्वादिष्ट भोजन के साथ मिलने वाली गर्मजोशी भरी संगति? लेकिन बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते और वास्तव में जानना नहीं चाहते। हमारे प्यारे पोते पोतियों के बारे में क्या, जिनके जीवन की शुरुआत ही हुई है और वे संडे स्कूल की बजाय वीडियो गेम पसंद करते हैं, और उनके लिए यीशु सिर्फ क्रिसमस सेट में रखी कोई प्लास्टिक की गुड़िया है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यीशु के आने को प्रभु का महान और भयानक दिन कहा जाता है। प्रायश्चित के दिन की गंभीरता को बढ़ाने के लिए योम किप्पुर पद 27 कहता है, तुम्हें आत्मत्याग का अभ्यास करना चाहिए, या आपके अनुवाद के आधार पर तुम्हें खुद को कष्ट देना चाहिए। कृपया समझें कि यह खुद को नुकसान पहुंचाने का आह्वान नहीं है। अपने शरीर को चाकुओं से काटना, या अपने हाथों में कीलें ठोंकवाना, या अपने सिर पर कांटों का मुकुट तब तक फोरवाना जब तक कि तुम्हारे सिर से खून न निकलने लगे, बल्कि विचार भोजन से परहेज करना, उपवास करना है, अपने आप को रोजमर्रा की सुख सुविधाओं से वंचित करना है। और जो व्यक्ति यहोवा द्वारा उन पर रखी गई इन मांगों को मानने से इनकार करता है वह अपने लोगों से अलग हो जाएगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। जो कोई भी काम करता है प्रभु के सप्त का उल्लंघन करते हुए वह नष्ट हो जाएगा। अरे,
ये दिलचस्प है कि निर्गमन की पुस्तक और बाइबल के अन्य अंश बताते हैं कि प्रायश्चित दिवस का एक मुख्य उद्देश्य पवित्र स्थान को शुद्ध करना है, जिसका अर्थ है तंबू और बाद में मंदिर, वह स्थान जहां परमेश्वर मनुष्यों के बीच रहता था। धीरे धीरे अपूर्ण और पापी मनुष्यों के साथ अपनी निकटता के कारण अधिक से अधिक प्रदूषित होता जाएगा, यहां तक कि उन पुजारियों के शारीरिक संपर्क से भी जो अपूर्ण थे। इसलिए प्रायश्चित दिवस के अनुष्ठानों का एक उद्देश्य यह था कि इसे पूरी तरह से शुद्ध किया जाए ताकि परमेश्वर वहां अपनी उपस्थिति बनाए रख सके। लगभग 2000 साल पहले पिंतेकुस्त शावोत के दिन से यीशु के शिष्य परमेश्वर का पवित्र स्थान बन गए हैं, प्रतीकात्मक रूप से नहीं बल्कि शाब्दिक रूप से। पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हर विश्वासी में निवास करती है, ठीक वैसे ही जैसे वह एक समय यरूशलेम के मंदिर में निवास करती थी। हमारी आत्माएं शुद्ध हो गई है, लेकिन क्या हमारे शरीर परिपूर्ण हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर अभी भी बूढ़े होते हैं और मरते हैं। हमारा मन अभी भी बुराई करने को स्वीकार करता है या उसमें आनंद भी लेता है? बाइबल हमें बताती है कि जब यीशु वापस आएगा तो हमारे पुनरुत्थान के समय हमारे भ्रष्ट और बर्बाद शरीरों को शुद्ध शरीरों से बदल दिया जाएगा जो पूरी तरह से अशुद्ध होने में असमर्थ हैं। वह हमारा पवित्र स्थान है, हमारा शरीर जहां परमेश्वर निवास करता है शुद्ध हो जाएगा। प्रायश्चित का दिन
पवित्र स्थान की शुद्ध इन पर्वों में सभी टुकड़ों को एक साथ आते देखना मेरे रोंगटे खड़े कर देता है।
पुनः पढ़ें लेवीय व्यवस्था 23-33 अंत तक।
अब हम बाइबल के अंतिम पर्व सुकोट पर पहुंचते हैं। इसे झोपड़ियों का पर्व या सिर्फ झोपड़ियां या यहां तक कि झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है। इसे इकट्ठा करने का पर्व भी कहा जाता है। साल की अंतिम अफसल। इसराइल एक कृषि आधारित समाज था, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सभी बाइबल त्योहार बरसते मौसम के आधार पर मनाए जाते थे। फसह, अखमीरी रोटी और प्रथम फल के वसंत के त्योहार अनाज की पहली फसल जो जौ थी पर केंद्रित थे। शावोत अनाज की दूसरी फसल जो गेहूं थी पर केंद्रित था। तीन पतरधार के त्योहार अनाज की आखिरी फसल के आसपास केंद्रित थे। खेत की फसलों की अंतिम कटाई। सर्दियों के आने से पहले जमीन बंजर हो जाती थी और आखिरकार बारिश होती थी जिससे अगले साल की फसलों के लिए जमीन को नमी मिलती थी। ये सभी तत्व एक तरह से या किसी अन्य तरीके से झोपड़ियों के त्योहार के आसपास के समारोहों में शामिल थे।
और यह भी आश्चर्य की बात नहीं है कि यहोवे और यीशुआ और उनके शिष्य संत पौलुस और नए नियम के अन्य लेखकों के साथ मिलकर कृषि संबंधी रूपांकनों का उपयोग करेंगे जिनसे इजरायली बहुत परिचित थे, ताकि महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मामलों में समानताएं खींची जा सकें। फिर भी कृषि की भौतिक दुनिया और ईश्वर के आध्यात्मिक क्षेत्र के बीच ये समानताएं बिल्कुल भी रूपक नहीं थीं, वे चित्रण थीं। इन सभी विभिन्न बाइबल पवों ने एक ही समय में सांसारिक इतिहास का स्मरण करते हुए और तत्काल उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए भविष्य सूचक घटनाओं को चित्रित और पूर्वाभासित किया। सात बाइबल पर्वों की तुलना में द्वैत की वास्तविकता के काम करने का शायद बाइबल में कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। याद करें कि द्वैत की वास्तविकता के भौतिक पक्ष पर फसह उस महान और भयानक रात को याद करता है जब इसराइल मिस्र में कैद से मुक्त हुआ था, जब यहोवा ने मिस्र के उन सभी पहलौठों को मार डाला था जिन्होंने अपने घरों के दरवाजों पर एक युवा मेरे के खून को रंगने के उसके उद्धारक प्रावधान को स्वीकार करके उसकी इच्छा के आगे सिर नहीं झुकाया था। लेकिन द्वैत की वास्तविकता के आध्यात्मिक पक्ष पर फसह अब उस महान और भयानक दिन को याद करता है जब परमेश्वर के मेरे यीशुआ को सूली पर चढ़ाया गया था और उसका खून हमारे जीवन के दरवाजों पर रंगने के लिए उपलब्ध कराया गया था, ताकि जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वे पाप की कैद से और परमेश्वर के नियमों के उल्लंघन के लिए हमारे कर्ण से मुक्त हो जाएं। इसके बाद स्मरण करें कि द्वैत की वास्तविकता के भौतिक पक्ष में अखमीरी रोटी का पर्व उस आनंदपूर्ण दिन का स्मरण कराता है जब इसराइल ने मिस्र की पकड़ से मुक्त होने की अपनी यात्रा आरंभ की थी। उस दिन उन्होंने बिना खमीर वाली रोटी बनाई ताकि वे जल्दी से गोशेन की भूमि को छोड़कर आजादी की राह पर निकल सकें। ये पलायन की शुरुआत थी, लेकिन द्वैत की वास्तविकता के आध्यात्मिक पक्ष पर वही पर्व मृतक यीशु द्वारा कब्र में प्रवेश करने की याद दिलाता है। यीशु के परिवार और दोस्तों को जल्दी से उसके शरीर को कब्र में रखना पड़ा क्योंकि सप्ताह आने वाला था। और जैसे पलायन की रोटी में सर न पैदा करने के लिए कोई खमीर नहीं था, वैसे ही यीशु के शरीर में भी कोई पाप नहीं था, जिसे हमेशा खमीर द्वारा दर्शाया जाता है जो सर न पैदा करता हो। इसके बाद याद करें कि भौतिक पहलू से प्रथम फलों का पर्व नए साल की पहली फसल की कटाई का उत्सव था, लेकिन आध्यात्मिक पहलू से यीशु प्रथम फलों के दिन कब्र से उठे, मृतकों के पुनरुत्थान में सबसे पहले उन सभी की पहली फसल जो यीशु की मृत्यु और प्रायश्चित के लहू द्वारा धर्मी बनाए गए थे। अगला पर्व शावोत पेंटेकोस्ट था। इसे प्रथम फल के 50 दिन बाद शुरू करने का समय निर्धारित किया गया था। भौतिक पहलू से शावोत में गर्मियों की फसल का जश्न मनाया जाता था, साल की दूसरी फसल। आध्यात्मिक पहलू से यह वह दिन था जब यहोवा ने रुआंक हाको देश पवित्र आत्मा को मनुष्यों के भीतर वास करने के लिए भेजा था। पहली फसल प्रथम फल ने यीशु को परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा किया। दूसरी फसल पिंतेकुस्त ने मनुष्यों को परमेश्वर के राज्य में इकट्ठा किया। जब हम सुकोट यानी झोपड़ियों के पर्व पर आते हैं तो हम निश्चित रूप से उसी गतिशीलता को काम करते हुए देखते हैं। इसकी एक भौतिक वास्तविकता है और इसके अनुरूप
एक आध्यात्मिक वास्तविकता है। आइए इस पर्व का अध्ययन करें और देखें कि इसे किस बात की याद में बनाया गया था।
इस 7 दिवसीय पर्व का पहला दिन हर साल 7वें महीने के 15वें दिन से शुरू होता है। उस महीने को अब तिशरी कहा जाता है। यह सितंबर अक्टूबर समय सीमा से मेल खाता है और जो शब्द हम आमतौर पर अपने अंग्रेजी अनुवादों में देखते हैं वे कहते हैं कि इस पर्व का नाम झोपड़ियों का पर्व या झोपड़ियों का पर्व है। वास्तव में इब्रानी में इसे हग सुकोट कहा जाता है। हमारे पिछले पाठ से याद कीजिए कि हग का अर्थ है तीर्थ यात्रा। अतः यह पर्व उन 3 पर्वों में से एक है जिसके लिए प्रत्येक पुरुष इजरायली को इसे मनाने के लिए यरूशलेम के मंदिर में आना आवश्यक है। 2 छोटी बातें ध्यान दें कि मैंने पुरुषों के लिए कहा है, यह जरूरी नहीं था कि पूरा परिवार यात्रा करे। हालांकि जब कोई लर का 13 साल का हो जाता था तो उसे अपने पिता की तरह ही आना पड़ता था। दूसरा ध्यान दें कि तीर्थ यात्रा का कारण मंदिर में बलिदान चढ़ाना था। यरूशलेम शहर में आना मुद्दा नहीं था, मंदिर में आना मुद्दा था। यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मंदिर यरूशलेम में था। हमारे पास आज कुछ लोग हैं, यहूदी और गैर यहूदी, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुरुषों को अभी भी इन त्योहारों के लिए यरूशलेम आना होगा ताकि वे परमेश्वर के आज्ञाकारी बन सके। यह सच नहीं है। बाइबल के समय में आने का उद्देश्य मंदिर की वेदी पर बलिदान चढ़ाना था, लेकिन चूंकि वहां कोई वेदी या मंदिर नहीं है इसलिए इस कानून का पालन करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा चूंकि तीर्थ यात्रा का उद्देश्य बलिदान चढ़ाना था और यीशु एक बार और हमेशा के लिए बलिदान है, इसलिए वास्तव में कोई बलिदान तत्व नहीं है जिसे आज पूरा किया जा सके। ऐसा कहने के बाद मैं इन 3 पवित्र तीर्थ दिनों में से किसी एक दिन से बेहतर समय के बारे में नहीं सोच सकता जब मैं इज़राइल जाऊं और यरूशलेम की यात्रा करूं। यह बहुत ही मार्मिक है और मुझे लगता है कि यह सार्थक है, लेकिन यह सोचना कि कोई व्यक्ति इन त्योहारों के लिए यरूशलेम जाकर बाइबल के पर्व के आदेश को पूरा कर रहा है और यह मानना कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अवज्ञाकारी हैं, ये गलत उत्साह और केवल एक गलती है।
झोपड़ियों के पर्व के पहले दिन को परमेश्वर ने सप्त घोषित किया है। सप्त नहीं बल्कि एक सप्त। इन अन्य गैर 7वें दिन सप्तों को सप्त कहकर मैं यहूदियों और ईसाइयों के बीच बोलने के सामान्य तरीके का उपयोग कर रहा हूं। वास्तव में हालांकि यह दोनों ही तरह की लापरवाही है और सप्त शब्द का गलत इस्तेमाल है, क्योंकि तोरह इन्हें सप्त इब्रानी सप्त के दिनों के रूप में नामित नहीं करता है, बल्कि इन विशेष दिनों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द आम तौर पर कोडेश मिक्रा है। एक पवित्र सम्मेलन, क्योंकि कोडेश मिक्रा के इन निर्दिष्ट दिनों में सामान्य काम से दूर रहने की आवश्यकता होती है, जो कि 7वें दिन सप्त के लिए समान लेकिन समान आवश्यकता नहीं है। सदियों से इन विशेष दिनों को व्यक्त करने के लिए सप्त शब्द को अपनाया गया है। यह एक दुखद त्रुटि है जिसके कारण बहुत भ्रम पैदा हुआ है।
इसके अलावा झोपड़ियों के पर्व के 7 दिनों की समाप्ति के बाद का दिन तोरह में इसे 8वें दिन के रूप में संदर्भित किया गया है। यह भी एक कोदेश मिक्रा है, उन अन्य सप्तों में से एक।
अब अन्य पर्वों के विपरीत सुकोट के लिए बलि को पर्व के 7 दिनों में से हर एक दिन मंदिर में लाया जाना चाहिए, इसलिए यह महंगा था। फिर भी सुकोट को सभी पर्वों में सबसे अधिक खुशी वाला माना जाता था। यहां पद 37 में और फिर बाद में संख्या के 29वें अध्याय में कई तरह की बलि देने का आह्वान किया गया है। यहां लैव्य व्यवस्था में 3 तरह की बलि देने का आह्वान किया गया था, ओला मिंचाह और जेवा शेलामीम। मैं उनमें से प्रत्येक की विशेषताओं पर नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने उन्हें पहले विस्तार से कवर किया है। यदि आप उन पाठों के लिए यहां नहीं थे या आपको रिफ्रेशर की आवश्यकता है तो या तो हमारी वेबसाइट पर जाए या समीक्षा करने के लिए उन पाठों की एक सीडी खरीदें।
हम अगले सप्ताह झोपड़ियों के पर्व का पालन जारी रखेंगे।